काम के चलते इशिका जल्दी ऑफिस पहुंच गई थी। ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ के अलावा वहां और कोई एम्प्लॉय नहीं आया था। ऐसे में इशिका के पास अच्छा मौका था जब वो प्रणय के वर्कस्पेस पर जा सकती थी। इशिका वहां गई तो उसने देखा कि दो दिन पहले इशिका ने प्रणय को जिस हार्ड ड्राइव पर काम करने के लिए दिया था वो वहां पर वैसी की वैसी रखी हुई थी। पिछले दो दिनों से वो ऑफिस भी नहीं आ रहा था। जब से इशिका ने उसे अपने केबिन में बुलाया था प्रणय काफी हड़बड़ा गया था। उसका अचानक छुट्टी लेना और इशिका के दिए गए काम को देखना तक नहीं, यही जाहिर कर रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई तो वो सावधान हो रहा था। इशिका ने दिशांत को प्रणय के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। उसने प्रणय के बारे में जानने के लिए दिशांत को कॉल किया। दिशांत को भी उस बारे में कुछ खास पता नहीं चला था। प्रणय के बारे में कुछ भी संदेहजनक नहीं था सिवाय उसके व्यवहार के। फिर भी इशिका प्रणय के मामले में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने दिशांत को जासूसी करना जारी रखने को कहा। दिशांत से बात करते ही इशिका ने जैसे ही कॉल रखा कि उसके पीछे से आवाज आई। इशिका हल्का सा हड़बड़ा गई थी। वो तुरंत पीछे की तरफ पलटी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसके सामने अभिमन्यु खड़ा हुआ था जो आंखों में सवाल लिए उसे देख रहा था। अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाकर दोबारा पूछा, तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ काम करने की परमिशन किस शर्त पर मिली है? तुम्हें जल्दी ऑफिस आने के लिए किसने कहा? और मैंने सुना कि तुम किसी को स्पाई करवा रही हो। अभिमन्यु इसकी ज्यादातर बातें सुन चुका था और ऐसे में इशिका चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती थी। उसके कुछ कहने से पहले ही अभिमन्यु ने दूसरी तरफ पलटते हुए कहा, मेरे केबिन में आओ और हाँ, मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाने वाली हो, तो झूठ मत बोलना। और कोई रास्ता भी कहाँ छोड़ा है तुमने मेरे पास? इशिका ने खुद बड़बड़ाकर कहा और धीमे कदमों से चलकर उसके पीछे आने लगी। अभिमन्यु सुबह जब ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा तो इशिका को वहां ना देखकर उसे वसुधा से पता चला कि इशिका जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गई है। हालांकि अभिमन्यु ने रूही से वादा किया था कि आज वो लेट ऑफिस जाएगा। उसका प्लान इशिका और रूही के साथ टाइम स्पेंड करने का था, पर इशिका के चलते अभिमन्यु भी बिना ब्रेकफास्ट किए जल्दी से राजवन चंपायर आ गया था। केबिन में आते ही अभिमन्यु अपनी चेयर पर बैठा और उसने इशिका को सामने बैठने का इशारा किया। इशिका के बैठते ही अभिमन्यु सख्त आवाज में बोला, प्रणय के वर्कस्पेस पर क्या कर रही थी तुम? पृथ्वी से पता चला कि तुम उसके बारे में काफी कुछ पूछ भी रही थी। हाँ, क्योंकि मुझे उस पर डाउट है, इशिका जल्दी से बोली। और जहां तक मुझे याद है पृथ्वी ने तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दिए थे। वो हमारी गाड़ी के पीछे बार बार इसलिए था क्योंकि उसे पृथ्वी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले थे। वो बस हमारी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, इसमें डाउट करने जैसा कुछ नहीं है, अभिमन्यु ने उसे समझाया। लेकिन उसे देखकर मुझे यही लगता है कि मैंने उसे देखा है, बस मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, इशिका ने जवाब दिया और अपना सिर पकड़कर सोचने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे और भौहें सिकुड़ी हुई थीं। इशिका के लिए दिमाग पर ज्यादा जोर देना उसकी सेहत के लिए सही नहीं था, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी। डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया था। अभिमन्यु ने इशिका के हाथ पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर गंभीर आवाज में बोला, तो तुम्हारी परेशानी का कारण प्रणय है, ठीक है, फिर मैं वजह ही खत्म कर देता हूँ। तुम्हें ये लग रहा होगा कि प्रणय मुझे या तुम्हें किसी तरह की चोट पहुंचा सकता है, ऊपर से वो हमारे आसपास भी रहता है, तो उसके लिए ये करना मुश्किल भी नहीं होगा। मैं उसका ट्रांसफर किसी दूसरी ब्रांच में करवा देता हूँ। क्या हम उसे काम से नहीं निकाल सकते? अचानक इशिका के मुंह से निकला। निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर वो इनोसेंट हुआ तो तुम्हें ही गिल्ट होगा, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके लिए फिलहाल के लिए यही काफी था कि अभिमान उसके आसपास नहीं रहने वाला था। और उसे कहाँ ट्रांसफर करने वाले हो? इशिका ने पूछा। डोंट वरी, गोवा में नहीं रखूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि उसे अभिमान की कंपनी में ट्रांसफर कर देता हूँ, वो यहाँ से दूर रहेगा और हमारी निगरानी में भी, अभिमन्यु ने जवाब दिया। इशिका ने हल्के से सिर हिला दिया था। उसे अब थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। अभिमन्यु अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और इशिका के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया था। उसने इशिका की चेयर के दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया था। मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, अब तुम्हारी बारी, अभिमन्यु बोला। और तुम मुझसे क्या मनवाने वाले हो? इशिका ने उलझन धरे स्वर में पूछा। यही कि आज से तुम काम से पूरी तरह दूर रहोगी। मैं भी हो सकेगा उतना जल्दी फ्री होकर तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा, पर तुम बहुत स्ट्रेस ले रही हो। मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए R&D डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए कहा था। रोहन ने बताया कि तुम सारे प्रोजेक्ट अपने देखरेख में करवाती हो। तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर भी काफी बढ़ गया है और अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला, अभिमन्यु सख्त आवाज में बोला। आज राजवंश एम्पायर से सिर्फ प्रणय का ही ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बल्कि इशिका को भी ऑफिशियली मटर्निटी लीव दी जा रही थी। इशिका इस मामले में कुछ नहीं बोल पाई। वहीं ऑफिस आने पर जब प्रणय को पृथ्वी ने अपने केबिन में बुलाया और उसे ट्रांसफर लेटर दिया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या सर?
प्रणय मायूस आवाज में बोला, तुम इस तरह डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो? और तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, उल्टा तुम्हारा प्रमोशन के साथ ट्रांसफर हो रहा है और मुझे पता चला है कि तुम्हारी फैमिली भी मुंबई में रहती है, अब तुम्हें उनसे अलग नहीं रहना होगा। पृथ्वी ने काफी पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया ताकि उसे शक ना हो। लेकिन मुझे गोवा ज्यादा पसंद है, मैं यहीं काम करना चाहता हूँ, मुझे प्रमोशन भी नहीं चाहिए, प्रणय ने तुरंत जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन पहले ही सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, तुम्हें मुंबई जाना ही होगा, तुम ऑफिशियली 2 दिन बाद वहां ज्वाइन कर सकते हो। पृथ्वी ने उसके हाथ में ट्रांसफर लेटर और उसकी अब तक की सैलरी का चेक पकड़ा दिया था। चाहकर भी प्रणय कुछ नहीं कर पाया, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पृथ्वी को थैंक्स कहा और फिर अपने वर्क स्पेस पर आकर उस लेटर को पटक दिया था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मुझे पता है कि ये तुमने किया है डॉक्टर मर्चेंट, लेकिन ये सब करके भी तुम अपने पति को उनसे बचा नहीं पाओगे। मैं यहाँ से चला भी गया तब भी अभिमन्यु राजवंश के साथ वही होगा जो वो चाहते हैं, बस मेरा नुकसान इतना हुआ है कि मैं उस हैकर के बारे में पता नहीं लगा पाया। इशिका को यही लग रहा था कि प्रणय के वहां से चले जाने के बाद मुश्किलें कम हो जाएंगी, पर अनजाने में वो प्रणय को आशिका के करीब भेज रही थी। वहीं दूसरी तरफ आशिका इस वक्त एजेंसी ऑफिस में मौजूद थी। रिहान के आ जाने से उसका काम आसान हो गया था। वो खुश थी कि अब उसे अभिमान से मिलने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिहान की हेल्प से मुश्किल से 2 दिनों का काम बचा था और इसके बाद वो मुंबई जा सकती थी। कैप्टन विराज उन पर पूरी नजर बनाए हुए थे, रिहान उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से उसके आने की वजह से आशिका का काम भी जल्दी से निपट रहा था। विराज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और वो स्क्रीन पर रिहान और आशिका को ही देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? ओके, एक्सेप्टेड, लेट्स सी कौन जीतता है। इतना कहकर विराज ने किसी को कॉल किया और 5 मिनट में एक लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी। लिया, मैंने तुम्हें आश के सेटअप में गड़बड़ करने के लिए कहा था, उसने जो भी काम किया है उसे फिर से किसी न किसी तरीके से अंडू कर दो, विराज बिना किसी भाव के बोला।
आई ट्राइड सर, पर उसके सेट किए हुए कोड्स को चेंज करना मेरे बस की बात नहीं है, साथ ही ये कोई मामूली सेटअप नहीं है, अगर एक भी कोड चेंज हुआ तो कोड रेड की सिचुएशन आ जाएगी, लिया ने सर झुकाकर कहा।
मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वो यहाँ संभालने के लिए बैठी हुई है,
विराज गुस्से में चिल्लाया। लिया जवाब में कुछ नहीं कह पाई, तभी कमरे के अंदर विराज की जूनियर ऑफिसर मीट ने दस्तक दी। विराज क्या करना चाह रहा था वो उससे छुपा हुआ नहीं था। मीट ने इशारे से लिया को वहां से जाने के लिए कहा। उसके जाते ही उसने विराज की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा,
मैं जानता हूँ आप क्या करने की सोच रहे हैं, पर इसके चक्कर में आप सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर उसे रोकना है तो और भी तरीके हैं। बहुत मुश्किल से उसने सब कुछ ठीक किया है, ऊपर से अथॉरिटी भी उसके काम से खुश है। अगर दोबारा गड़बड़ हुई तो बात सीधे आप पर आएगी, क्योंकि हमारे लीडर आप हो,
मेक ने उसे समझाया। विराज की मुठ्ठियाँ कसी हुई थी, उसने दांत पीसते हुए कहा,
मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें पता है तो तुम ही सजेस्ट कर दो। इस काम को खराब करने के बजाय हम नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ऐश उन्हें सॉल्व किए बिना नहीं जा पाएगी। ऊपर से आपका भाई भी है, आप उससे बात क्यों नहीं करते? ऐश के कोड को वो अच्छे से समझता है,
मेक ने सुझाव दिया।
अगर मेरा भाई ही मेरी हेल्प करता तो मुझे इतना सब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, उल्टा यहाँ आने के बाद उसने ऐश की हेल्प की है। अगर यही सब चलता रहा तो हम सोचते रह जाएंगे और अपना काम खत्म करके वो यहाँ से जा चुकी होगी,
विराज गुस्से में बोला। एक बार बात करके देखिए, मुझे लगता है इस मामले में आपका भाई ही हेल्प कर पाएगा, बाकी कोई काम सीधे तरीके से ना हो तो अनएथिकल तरीके भी होते हैं, हम उन्हें हॉस्टेज बनाकर रख सकते हैं, कह देंगे उन्होंने हमारे सिक्योरिटी कोड्स चुराए हैं, मीक ने कंधे उचकाकर कहा, जैसे ये सब करना उनके लिए रोज का काम हो। विराज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट उभर आई थी, वो बोला,
ये तरीका मुझे ज्यादा सही लग रहा है, फिर भी मैं एक बार रिहान से बात करना चाहूंगा ताकि किसी तरह की बेवकूफी करने के बजाय वो अपनी फ्रेंड को बचाने में हमारा साथ दे।
मीक ने मुस्कुराते हुए थम्स अप किया और फिर वहां से चला गया था। विराज ने तुरंत रिहान को बात करने के लिए अपने केबिन में बुलाया। अभिमान ने राघव को सलीना के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। तृप्ति से वो बस इतना ही उगलवा पाए थे कि सलीना उसका इंतजार करते हुए एयरपोर्ट के पास किसी होटल में रुकने वाली थी। पृथ्वी पहले ही उस होटल और रूम में जा चुका था, लेकिन सलीना वहां नहीं थी। राघव उन पॉसिबल जगहों पर जा रहा था जहां पर सलीना हो सकती थी। सलीना को ढूंढते हुए राघव उस जगह पर पहुंचा जो स्काई ने उन्हें रुकने के लिए अपना फ्लैट दिया था। उसके साथ रचित भी था और रचित के होते हुए उसे अनलॉक करना कोई मुश्किल काम नहीं था। फ्लैट में बिल्कुल अंधेरा था, फिर भी सिक्योरिटी के चलते राघव ने अपने हाथ में रिवॉल्वर ले रखी थी।
यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई होगा,
रचित ने चारों तरफ देखते हुए कहा। राघव ने उसे आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया और फिर लिविंग रूम की लाइट्स ऑन की। लाइट जलते ही रचित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। सोफे पर एक मैगजीन रखी हुई थी, उसके आगे लगी टेबल पर खाली बोल रखा था। राघव ने उसे दूसरी तरफ जाने का इशारा किया और खुद दबे पांव से कमरे की तरफ बढ़ने लगा। रचित धीरे से चलते हुए दूसरे कमरे की तरफ जा रहा था, तभी वो जोर से चिल्लाया, किसी ने उसके सिर पर पीछे से डंडा मारा था।
आह, तुम्हारी इस हरकत पे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं,
रचित जोर से चिल्लाया। जब से राघव और रचित उस फ्लैट पर आए थे तब से सिर्फ रचित ही बोल रहा था, ऐसे में ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेला हो। उसके पीछे सलीना खड़ी थी, उसने डंडे से दूसरा वार करना चाहा लेकिन राघव ने तेजी दिखाते हुए उसे पीछे से पकड़ लिया था और सलीना को गन पॉइंट पर ले लिया था।
मुझे लगा ही था कि ऐसी जगह मिलेगी जहां पर तुम्हारा आना जाना आसान हो, देर से ही सही लेकिन पकड़ में तो आई,
राघव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा।
मैं कुछ नहीं जानती, मेरा यकीन करो,
सलीना हड़बड़ाते हुए बोली।
ओ रियली? मैं उस लड़की पर बिल्कुल यकीन नहीं करने वाला जिसने पीछे से मुझे डंडे से मारा और वापस मारने वाली थी,
रचित गुस्से में चिल्लाकर बोला। उसने अपना सिर पकड़ रखा था जो एक ही वार से भयंकर दर्द कर रहा था। सलीना ने अपना सर झुका लिया था। वो जानती थी कि वो पूरी तरह मुसीबत में फंस चुकी है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था।
अगर तुम लोग जाने दो तो मैं तुम्हें एक बड़ी राज की बात बता सकती हूँ,
सलीना ने चांस लेते हुए कहा।
तुम्हें एक नहीं, बहुत सी बातें बताने वाली हो और तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रही बात तुम्हें जाने देने की तो ये हम डिसाइड करेंगे,
राघव ने भौहें चढ़ाकर कहा और सलीना को खींचकर वहां से ले जाने लगा।